भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक पेन देना और। हरे कृष्णा। तो आज के इस 27 नवंबर के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज एक सुंदर कहानी आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत से। सबसे पहले एक ब्रह्मा के एक दिन में एक बार एक गंधर्व का जन्म हुआ। उसका नाम था उपबरहण। क्या नाम था? उपबरहण। वो बहुत सुंदर था और गंधर्व का मतलब पता है आपको क्या होता है? ऊपर के लोक में जाएंगे ना आप स्वर्ग लोक में तो बहुत सारे लोक हैं वहां। गंधर्व लोक, यक्ष लोक, किन्नर लोक, किम पुरुष लोक और बहुत सारे। उसमें लोग जैसे बंदर कैसे होता है, जन्म से ही एथलेटिक चैंपियन होता है। वो होता है कि नहीं? बंदर को ही जाता क्या स्कूल में? आता है कभी जिमनास्टिक सीखने में? जन्म होते ही वो जन्म से ही एथलेटिक चैंपियन होता है कि इस पेड़ से एक हाथ पकड़ के उस पेड़ पे उल्टा सुलटा कुछ भी कर सकता है वो। वैसे इन गंधर्व, किम पुरुष, यक्ष और बहुत सारे लोगों में जन्म से ही लोग गाने में निपुण रहते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं। कुछ लोग जन्म से ही नृत्य में एक्सपर्ट रहते हैं, कुछ लोग जन्म से ही बजाने में एकदम एक्सपर्ट रहते हैं। जन्म से ही मतलब उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिसमें लोग जन्म से ही आकाश में उड़ सकते हैं। जैसे पंछी कैसे उड़ता है, कुछ समय बाद अपने आप उड़ जाता है, फिर उड़ता ही रहता है, जिंदगी भर उड़ता है। वैसे ही ऐसे लोग हैं जहाँ पर शरीर होता है मनुष्य जैसा, लेकिन वो व्यक्ति आकाश में उड़ते रहते हैं, कभी भी इच्छा हो तो भी उड़ सकते हैं। उन्हीं लोगों को स्वर्ग लोक कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपको लगता है ना कि रात को स्वप्न आया था और मैं स्वप्न में आकाश में उड़ रहा था, वो सारे स्वप्न वहाँ पूरे हो जाते हैं, अपने आप पूरे हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, क्षिणे पुण्ये मर्त लोके विशन्ति। जितना पुण्य कमाया है उतना वहाँ जाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे सुंदर शरीर में, फिर पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस बैक टू पेवेलियन, पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा। तो वैसे ही सुंदर शरीर एक स्वर्ग लोक में होने का एक लक्षण है। वहां का जो भी शरीर होता है वो सुंदर ही होता है, कोई व्यक्ति कुरूप है ही नहीं। पृथ्वी पर कैसे होता है, कुछ लोग सुंदर होते हैं बहुत कम, और अधिकतर लोग अच्छे नहीं दिखते हैं, बहुत ही सुंदर। कितने परसेंट होता है? एक सोसाइटी में एक लड़की सुंदर होगी, एक आदमी सुंदर होगा, बाकी सारे लोग ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं। लेकिन स्वर्ग लोकों में सभी जीव जितने भी जन्म लेते हैं वो सब एक से एक सुगंध होते हैं, सुंदर होते हैं। और दूसरी एक विशेष बात है वहां पर, यहां पर व्यक्ति ना पृथ्वी पर कितना भी सुंदर होगा ना, कितना भी सुंदर होगा तो भी उसके शरीर से बदबू आती है पसीने की। आप कितना भी सेंट लगाओ, कितना भी मेकअप करो, 4 घंटे के बाद में सारा मेकअप समाप्त हो जाता है, सारा डिओड्रेंट का स्मेल खत्म हो जाता है, अंदर का स्मेल इतना पावरफुल है। लेकिन स्वर्गलोक में कैसा होता है कि जन्म होते ही आपके शरीर में एक फूल की खुशबू आएगी, आपको जितना पसीना आएगा उतने उस फूल की खुशबू आती रहेगी, और वो भी एक एक कोस दूर तक आपकी खुशबू आती रहेगी। आप यहां बैठे ना उधर तक खुशबू आएगी। और समझो ऐसे 80 लोग बैठे हैं एक साथ में तो 80 प्रकार की खुशबू यहां पर घूमती रहेगी, कोई एयर फ्रेशनर की जरूरत नहीं है। आप आए बाहर आई आपके होने से ही खुशबू यहां पर आती रहेगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो नेचुरली कहते हैं कि स्वर्ग लोक में जन्म लेने के बाद में वहां के लोगों को ना बहुत गर्व होता है कि मेरे शरीर कितना सुंदर है, आपके शरीर में कौन से खुशबू आ रही है, आप बोले कमल के आ रहे हैं, मैं बोलेगा गुलाब के आ रही है, आप बोले कि चंपा के आ रही है, ऐसे होता है। फिर जन्म से ही गोल्ड मेडल संगीत में, गाने बजाने नाच नृत्य करने में कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, जन्म होते ही जैसे अपना मनुष्य कैसा कुछ देर के बाद बोलता है ना, फिर जिंदगी में बोलता है वो, जो पंछी के पास बोलने की कला नहीं है, जानवर बोल नहीं सकता है, वो तो औ ई ऊ ये आवाज करेगा बस, भाषा नहीं बोलेगा कोई, लेकिन मनुष्य कैसे, मनुष्य मतलब तुरंत भाषा बोलना आरंभ करेगा वो। वैसे ही देवता लोग मतलब जन्म से ही सुगंध, जन्म से ही सुंदरता, जन्म से ही कला, तो अपने आप गर्व होता है। और जैसे कैसे होता है ना, एक परिवार में सब लोग सुंदर होते हैं, लेकिन फिर भी छोटी बेटी सबसे ज्यादा सुंदर होती है और बड़ा बेटा सबसे अधिक सुंदर होता है ना, उसमें भी सुंदरता में होता है ना, ये सबसे ब्यूटीफुल है, सब लोग ब्यूटीफुल है, लेकिन इसमें ये जो है ना वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। उस तरह से देवताओं में भी सुंदरता में भी कोई श्रेष्ठ होता है, और उसको देखकर बाकी देवताएं उसके पीछे आकर्षित होती रहती हैं। तो ऐसा ही ये जो था ना देवता गंधर्व उपबरहन नाम का, वो उनमें भी बहुत सुंदर था, उसका शरीर, उसका चेहरा, उसकी खुशबू। तो कहते हैं कि उसके लोक में जितनी अप्सराएं थी वो भी उसके पीछे मोहित थी। अभी देखो, एक तो सुंदरता, एक लोग आपके ऊपर पागल हो रहे हैं तो कितना गर्व बढ़ेगा आपका, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई तारीफ करने वाला नहीं होगा तो आपको इतना गर्व नहीं होगा, लेकिन आपके पास सब देखते हैं, सब पीछे पीछे आपके आते हैं, तो आपका गर्व जो है ना वो बढ़ते जाएगा। फिर क्या होगा गर्व होने पर, क्या होता है गर्व होने पर बताइए, गर्व में क्या खराबी है, अच्छा है ना बताइए, गर्व होने पर क्या खराबी होती है। गर्व होने पर आदमी दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बहुत घमंड आता है उसको, सबकी निंदा करेगा वो, सबका तुच्छ तुच्छ बनाएगा, अपने सामने सबका कचरा करेगा, वो तो दूसरे के लिए नुकसान करेगा, वो खुद के लिए नुकसान क्या होता है गर्व होने के बाद बताओ, हाँ ये कहते हैं पतन हो जाएगा, बाइबल में भी लिखा है पतन होने के पहले आदमी को गर्व होता है और गर्व होने के बाद में उसका पतन हो जाता है। और एक बात होती है सब लोग याद रखना, कभी भूलना नहीं, इस प्रश्न पूछेंगे तो आपको, गर्व होने के क्या होता है, गर्व होने से आप भगवान से बहुत दूर चले जाते हो, क्योंकि तो भगवान आपका सब कुछ जितना भी दुर्गुण है ना वो माफ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर नम्रता होगी ना तो जितने दुर्गुण आपके अंदर है वो भगवान माफ कर सकते हैं, और आपके अंदर खचाखच सद्गुण भरे हुए हैं और आपको घमंड है उस बात का तो भगवान दूर चले जाते हैं आपसे। भगवान को सद्गुण दुर्गुण से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप में गर्व है घमंड है भगवान आपको छोड़ के चले जाते हैं, और भगवान को जैसे भगवान छोड़ते हैं आपको तुरंत आपका पतन आरंभ होता है। इनका क्या हुआ, एक बार देवताओं ने तय किया, जैसे हम लोग तय करते ना कार्तिक का महीना है सब लोग दीपदान करेंगे, हाँ दामोदर अष्टक गाएंगे, कार्यक्रम होता है ना भाई, जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, ऐसे देवताओं ने एक उत्सव अरेंज किया और उस उत्सव में सोचा कि हम सब मिलकर देवता लोग अपने अपने सुंदर आवाज में सुंदर सुंदर वाद्य बजाएंगे, नृत्य करेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। देवताओं के लिए भी ये रोज का कार्यक्रम नहीं है, कभी कभी करते हैं लोग। देवता लोग दिन भर क्या करते थे बताओ, आप सब लोग सोचते हैं ना कि स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्गवासी कैलाशवासी, हाँ क्या क्या होता है उधर कुछ तो बताओ, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। स्वर्ग लोक में लोग केवल शरीर का भोग लेने के लिए जाते हैं और इतना भोग रहता है, इतना भोग रहता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, स्वर्ग लोक में ना जो फूल खिलते ना उसमें इतनी वैरायटी होती है कि आप यकीन नहीं कर सकते, इतनी वैरायटी। हमारे पास कैसे, गुलाब है तो खुशबू नहीं है, कलर अच्छा है तो खुशबू नहीं है, और खुशबू है तो कलर अच्छा नहीं है, और एक मीन दो तीन का फूल आता है, एक मोगरे का खुशबू आती है और एक चंपा का खुशबू आती है, और कौन सा फूल दिखा बॉम्बे में लाके मुझे खुशबू वाला। देखिए स्वर्ग लोक में अनंत प्रकार के फूल होते हैं और उसमें इतनी खुशबू होती है ना कि एक फूल रखेगा ना यहाँ पर कि पूरा हॉल पूरा महक जाएगा उससे। और सबसे विशेष बात यह है कि स्वर्ग लोक में जब कोई फूल खिलता है तो वो मुरझाता नहीं है, परमानेंट खिला हुआ रहता है। हमारा कैसा, दिन में खिलेगा शाम को ऐसा अच्छा दिखने वाला फूल, शाम तक काला कले में पहनी पाया ना, पहनी ये माला पहनी ना मैंने, अच्छी फूलों की खुशबूदार माला पहनी है एकदम फ्रेश, प्रवचन खत्म होते होते काला, शरीर के गर्मी से, यहाँ की गर्मी से जो बढ़ती है ना बोलने से, उसमें से ये फूल काले काले होने लगते हैं, और प्रवचन खत्म होते निकालेंगे ना सारे फूल काले। लेकिन स्वर्ग लोक में कोई भी फूल मुरझाता नहीं है, उसका नाम है नंदन वन, वो इंद्र का बगीचा है, उसके अंदर जो भी फूल खिलते हैं कभी मुरझाते नहीं है। इसीलिए देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करते रहते हैं, इतना एक्सेस स्टॉक है उनके पास में, नीचे कुछ हो गया ना भगवान ने कुछ रावण का वध कर लिया पुष्प वृष्टि, कंस का वध कर लिया मथुरा में पुष्प वृष्टि, धेनु का सर का वध कर लिया पुष्प वृष्टि, इतने सारे फूल है। भगवान ने जन्म लिया तो बोलते हैं कि जब भगवान ने जन्म लिया था ना तो देवता लोग अपने जहाज में बैठ बैठ कर भर भर के फूल लेकर आ रहे थे, खाली करके वापस जा रहे थे, वापस आ रहे थे देवऋषि देव सब लोग, देवता अप्सराएं जितने भी लोग थे अपने अपने हवाई जहाज में मथुरा जमुना के किनारे आकर ऊपर हवा से इतने फूल बरसाए उन्होंने, जा जाके रात भर बरसाए जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि वहां के फूल केवल खिलते हैं मुरझाते नहीं। तो ये एक बद गलत फहमी मन से निकाल देना कि स्वर्ग लोक में भगवान का नाम लेते लोग, स्वर्ग लोक में केवल लोग शरीर का भोग लेने जाते हैं, खाने का भोग, सोने का भोग, कपड़े का भोग, सुंदरता का भोग, खुशबू आ रही शरीर से उसका भोग, और शरीर भी ऐसे होते हैं ना वहां पर कि कोई क्या बताए आपको, उनके शरीर में कोई मलमूत्र नहीं है, टॉयलेट नहीं वहां पर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉयलेट होगा तो बदबू आएगी ना, बदबू का इंतजाम ही नहीं है शरीर में उनके, उनके शरीर में नहीं है, उनके लोक में भी नहीं है, किधर भी नहीं है। इसलिए भक्त लोग स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं। आप बोलेंगे क्या बात है ये, इतना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं आप, भक्त लोग जाना नहीं चाहते वहां पर, क्या बात है ऐसी, वहां पर अच्छा है ना, अगर बदबू नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है, सुंदरता है, खाने को अच्छा मिल रहा है, फूल नहीं मुरझा रहे हैं, तो जाना चाहिए वहां पर ना। लेकिन भक्त लोग कहते हैं हम नहीं जाएंगे वहां पर, अभी बताइए कारण क्या उसका, कुछ तो कारण होगा ना। यस विभूति जी, वहां पर जब भक्त जाता है तो इतना सारा भोग होता है इसलिए वो भगवान को भूल सकता है। भगवान को आप कब याद करते हो, आप बताओ कब याद करते हो? भगवान को याद करने में दुख की जरूरत होती है, जब दुख होगा तो ये हे भगवान ऐसे पुकारेंगे, सुखी सुख होगा तो भगवान को पुकारने की जरूरत क्या आपको, और इसके बाद में स्वर्ग लोक के इतने सुख है कैसे भगवान को याद करेगा। इसलिए भक्त लोग कहते हैं भगवान आप कितना भी कृपा करोगे ना हम पर, कितना प्रसन्न हो जाओगे ना, एक काम करना स्वर्ग में मत भेजना, नरक में रखना, बोलते कीड़ा बना के रखना मुझे आप, लेकिन जहां भगवान की याद हो रही है वहां रखना कीड़ा बना के मुझे, वहां पंछी बना के रखना, वहां कीटक बना के रखना, मुझे वहां नहीं जाना है, ब्रह्मा लोक में जाना नहीं मुझे, अगर आपको भूलने की अगर संभावना होगी मुझे वहां नहीं जाना है। बहुत बड़ा विचार है ये, बहुत बड़ा त्याग है ये। जैसे कहना है कि कुंती माता जी बताती है श्रीमद् भागवत में, वो कहते हैं कि जो सबसे धनी होते हैं, जो सबसे सुंदर होते हैं, जो सबसे विद्या वाले होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं आपकी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तो अपने ज्ञान में, अपनी सुंदरता में, अपनी धन दौलत में, अपने सौंदर्य में इतना गर्व होता है उनको कि वो आपकी भक्ति नहीं कर सकते। त्वाम किंचन गोचरम, जो गरीब होता है ना वही आपको याद कर सकता है, क्योंकि तो धनी होगा तो धन पे गर्व करेगा, सुंदर होगा तो सुंदरता पे गर्व करेगा, होता है कि नहीं गर्व? और कोई कुरूप व्यक्ति लेकिन 10 डिग्री है उसके पास PhD तो उस पर गर्व करेगा, इतना ज्ञान है मेरे पास कि मैं किसको भी उद्धार कर सकता हूं। तो ये व्यक्ति अभी भाई कहने का तात्पर्य क्या था मुझे कि भक्ति वही हो सकती है जहां भक्तों का संग होता है। ये नहीं कि धनी व्यक्ति भक्ति नहीं कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। धनी व्यक्ति का धन अगर भगवान की सेवा में है तो वो भक्ति कर सकता है, धनी व्यक्ति का धन अगर खुद के भोग में है तो वो नहीं कर सकता है, वो उसी में लगा रहेगा फिर। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, कितने वर्णन शास्त्र में दिए गए हैं। तो कुंती माता कहते हैं कि त्वाम किंचन गोचरम, जो धन होते हुए भी सारा धन भगवान की सेवा में लगाता है और खुद को गरीब समझता है भगवान के सामने, वो भक्ति कर सकता है। जो बहुत ज्ञानी है लेकिन उसका ज्ञान इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, उसका ज्ञान भगवान की सेवा के लिए है, लोगों को देने के लिए है ज्ञान, उसका उसको गर्व नहीं है, तो वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसलिए बहुत धनी भक्त भी हुए हैं, पांडव भी बहुत धनी थे राजा बनने के बाद, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, तब किंग थे लेकिन राजा ऋषि माना गया उनको, क्योंकि उनका ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान, अधिकार, पावर सब कुछ भगवान की सेवा में था, इसलिए वो उनका गर्व नहीं हुआ कभी, ये मेरा है, ये भगवान ने दिया हुआ है, सब ठीक है। तो एक बार स्वर्गलोक में संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो ये व्यक्ति ने क्या किया होगा? देखो, जिस व्यक्ति का सौंदर्य खुद के लिए होता है उसका परिणाम क्या है, वो 4, 5, 10 सुंदर औरतों को लेकर ही आया वहां पर, जो केवल उसको देखने के लिए वहां पर आए थे, उसके साथ में आए थे, उनको संकीर्तन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो संकीर्तन हो रहा है लेकिन इनका 10-15 औरतों का दिल इनके ऊपर लगा हुआ है, ये भी उनको ही देख रहा है। उसके बाद में क्या किया, वो सब लोग भगवान का नाम का गुणगान कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, क्या करें। तो ये बीच में इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं ना फिल्मी गाने, वैसे गाना गाना शुरू कर दिया, भगवान का गौरव करने के बदले में देवताओं का गौरव के गाना गाना शुरू कर दिया उसने। दो पाप किए, बोले भागवत में लिखा है, दो पाप किए उसने, एक सुंदर स्त्रियों को लेकर शरीर को भोगने की भावना से वहां पर आए, अलग मूड में आए, और भगवान का गुणगान करने के बदले किसी का गुणगान करने लगे। तुरंत उनको शाप मिला वहां पर कि पृथ्वी पर जाकर शूद्र के घर में जन्म लोगे आप। तो वो जो गंधर्व था सुंदर, उपबरण नाम का, अगले जन्म में पृथ्वी में दासी का पुत्र बना। लेकिन कुछ पुण्य कर्म भी थे उसके अच्छे, दासी मतलब एकदम सिंपल काम करती थी वो। लेकिन उस दासी को एक बार महान वैष्णवों की सेवा करने का मौका मिला, उनकी देखभाल करने का, भोजन बनाने का, उनके बर्तन मांजने का, सब उनकी व्यवस्था साफ सफाई करने की। तो वो विधवा थी, दासी जन्म से, मतलब शादी होने के बाद तुरंत विधवा हो गई इसका जन्म होते ही, और ये पुत्र उसका पहले वाला गंधर्व। अभी क्या है, अभी कुछ सौंदर्य नहीं है, कुछ खुशबू नहीं है, कुछ नहीं है, दासी पुत्र बन गया सिंपल, जितना गर्व था सब खत्म हो गया उसका, है ना। जब धनी आदमी का धन खत्म हो जाता है तो अपने आप घमंड उसका उतरता है, सुंदर व्यक्ति कुरूप बन जाती है, बुढ़ी बन जाती है, अपने आप गर्व खत्म। और समय क्या करता है, समय के साथ आपका सारा सौंदर्य, आपका सारा यौवन, सारी धन धन दौलत, सारा ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति भी मुलक्कड़ बन जाता है, उसको नाम भी खुद का याद नहीं आता है। एक समय आता है ऐसे उम्र होने के बाद में, इतना PhD था वो, अभी उसका खुद का नाम, वाइफ का नाम, खुद का नाम भी याद नहीं आ रहा है। जैसे मेरी मम्मी है ना, आज की तारीख में 90 साल की है, लेकिन दिन में 10 बार पूछती है मेरा नाम क्या, मुझे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, मुझे मेरे बीवी को 10 बार पूछते तुम कौन हो, इतना भी भूल जाते हैं। मोहम्मद अली इतना पावरफुल था, मालूम है आपको, इतना जोरदार मुक्का मारता था स्पीड में कि हाथ भी दिखता नहीं था उसका, इतना स्पीड था उसका, मशीन की तरह, ये पंखा कैसा घूम रहा है, पत्ते भी दिखते नहीं, खाली एक राउंड दिखता है, इतना फास्ट घूम रहा है वो, वैसा उसका बॉक्सिंग का स्पीड था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये ऐसा ग्लास है ना, ये भी उठाने में असमर्थ था वो, दूसरा आदमी उसको ग्लास उठा के पानी पिलाता था, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, सबसे पावरफुल, सबसे फास्ट। समय के साथ में सब खत्म हो गया उसका। और ऐसे बोलते ना हम लोग, ऐसे बोलते हैं मेडिकल में, वेजिटेबल बन के मर गया वो, मतलब बिस्तर में गिर के कुछ भी ना कर सकता था अपना काम, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई ऐसे ही, पैरालाइज होके पूरा। क्या गया वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडल किधर गया, धन दौलत शक्ति स्पीड सब खत्म। समय जो है वो उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है, समय के प्रभाव में सबका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अभी क्या बचा? दासी पुत्र। लेकिन पूर्व संस्कार अच्छे थे उसके, इसलिए वैष्णव की सेवा प्राप्त हो गई और माता ने बड़े ही दिल से वैष्णवों की सेवा की। और वैष्णव लोगों का जो बचा हुआ था ना प्रसाद, ये बच्चा और माता खाती थी। अब ये कथा कहां पे आ रही है पता है आपको? ये कथा कौन किसको बता रहा है? ये कथा का आरंभ बहुत रोचक है। नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से बात कर रहे हैं और व्यास देव दुखी हैं कि मैंने इतना सारा ज्ञान लिखा लेकिन मेरे को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, और अपने गुरु नारद मुनि से पूछ रहे हैं, महाराज कुछ बताइए कि मैंने अपनी सेवा तो अच्छी तरह से की है, आपने कहा था लिखना चाहिए सब कुछ शास्त्र, सब शास्त्र मैंने लिखे, संतुष्टि नहीं दिल में हो रही है, तो दिल में कुछ तड़प है मेरे, आप बताइए कारण क्या है उसका। तो नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को, वेद व्यास को बता रहे हैं कि तुमने जो भी कुछ लिखा है ना उसमें भगवान का गुणगान नहीं किया है, खाली तत्व ज्ञान लिखा है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये पंच महाभूत है, ये तीन गुण है, ये त्रिविध ताप है, ये दुनिया ऐसी है, ये स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, पृथ्वी लोक है, इतना ब्रह्मांड है, इतने अनंत ब्रह्मांड में, बाद में विरजा नदी है, फिर वैकुंठ लोक है, उसके बाद में पूरा ज्ञान अच्छी तरह से दिया आपने, लेकिन भगवान का किधर गुणगान नहीं किया, भगवान की कथा नहीं बताई, भगवान की कहानी नहीं बताई, भगवान का गौरव नहीं किया आपने, भगवान के धाम का गौरव भी नहीं किया। तो नारद मुनि जी व्यासदेव को कह रहे हैं, अभी मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताता हूं कि मैं नारद मुनि बना ही कैसे। तो वो खुद की कहानी बता रहे हैं उसको, व्यासदेव जी को, कि मैं पहले उपबरहण गंधर्व था, मैंने ऐसा गलत काम किया, दासी का पुत्र बना, फिर दासी के जीवन में मैंने संतों का संग प्राप्त हुआ, जो संत हमेशा भगवान की ही सेवा में मग्न रहते थे, भगवान के विषय में कथा करने में मग्न रहते थे, भगवान का यज्ञ करने में मग्न रहते थे, और पूरा करने के बाद भगवान को भोग लगाते थे और भोजन करते थे, उसके बाद में जो बचा कुचा था उनका महाप्रसाद वो मैं खाता था। और कहते हैं जिस दिन मुझे उनका महाप्रसाद प्राप्त हुआ, सारा मेरा जो भ्रम था सब नष्ट हो गया, जो जो मेरे मन में आसक्तियां थी वो सब नष्ट हो गई, उसी दिन मैं कर्म से मुक्त हो गया। फिर जैसे ही प्रसाद खाया उस दिन से मेरा तमोगुण रजोगुण नष्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने कि दासी पुत्र था मैं, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अज्ञानी था, जन्म भी शूद्र कुल में हुआ था, मेरे पास कुछ गर्व करने के लिए था ही नहीं कुछ, लेकिन वैष्णवों की सेवा मिली, वैष्णवों का प्रसाद प्राप्त करते ही मेरा सर्वांगीण उद्धार हो गया, मेरी चेतना ही बदल गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा। फिर क्या हुआ? फिर वो जब रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, कर्म नष्ट हो गए, तो मुझे और रुचि उत्पन्न हुई भगवान के लिए। तो प्रसाद खाने से क्या होता है? प्रसाद खाने से भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न होती है, और प्रसाद ही खाते रहेंगे तो रुचि बढ़ जाती है, बाकी जो दुनिया की बेफजूल बातें हैं उनमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। आप बोले अरे बाप रे ऐसा है वो तो मुझे प्रसाद नहीं खाना है, ये दुनिया में भी इंटरेस्ट रखना है बाबा, दुनिया में भी पैसा कमाना है, बहुत सारा विवाह करना है, काम करना है, बच्चों को पालना है, अगर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो काम कैसे करूंगा मैं। यहाँ पर भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको विश्वास है भगवान पर, लेकिन वो आगे नहीं आते हैं, कोई ज्यादा आगे आ गए और फंस गए तो फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फिर पेशेंट कैसे देखेंगे, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा ऑपरेशन करने में, फिर धनवान नहीं होऊंगा, गरीब रह जाऊंगा मैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी। इसलिए डर के मारे विश्वास होने पर भी ज्यादा आगे नहीं आते हैं, प्रार्थना में, उत्सव में, कथा सुनने में नहीं आते हैं, उनको डर लगता है कहीं इंटरेस्ट कम हो गया तो। लेकिन इंटरेस्ट कम हो गया तो आपका नुकसान नहीं होता है इसके अंदर, कोई गरीब नहीं बनता है उसके बाद में। शास्त्र में कितना वर्णन दिया है कि भगवान की रुचि उत्पन्न के बाद में सबसे पहले क्या होता है, जीवन में आनंद आता है, दुख समाप्ति हो जाती है। किसको दुख नहीं दुनिया बताओ? अंबानी को दुख नहीं है, राजा को दुख नहीं है, प्रधानमंत्री को दुख नहीं है क्या? जो बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास सब कुछ है, जो आपको चाहिए सब उनके पास में है, फिर भी वो दुखी है, और आप भी दुखी हो, और आपसे भी जो गरीब आदमी वो भी दुखी है, सब लोग दुखी है इसमें। और भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न होने तुरंत ही होने के बाद आनंद शुरू होता है, आनंद जो आपको चाहिए। सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जैसे ही भगवान के विषय में रुचि आसक्ति स्वाद उत्पन्न होता है, तुरंत आनंद की शुरुआत होती है, दुख की समाप्ति होती है। वैसे नारद मुनि बता रहे हैं कि वो जन्म में दासी पुत्र के रूप में मेरे आनंद की वृद्धि होने लगी, मुझे भगवान के विषय में और रुचि होने लगी, तब जाकर वो साधुओं ने मेरे इंटरेस्ट को देखकर मुझे बैठकर बहुत सी बातें समझाई जो एक शूद्र को सुनने की योग्यता नहीं होती है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट देखकर, मेरी प्रामाणिकता देखकर, हाँ, मेरी सादगी को देखकर, मेरे सेवा भाव को देखकर वो साधु लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने, मैं शूद्र होते हुए भी, दासी का पुत्र होते हुए भी, बैठकर मुझे समझाया बहुत सारा चीज जो ब्राह्मण के पुत्र को समझाते हैं। फिर मैं और भगवान के विषय में अट्रैक्ट हो गया। तो नारद मुनि बार बार बता रहे हैं, अरे बंद करो ना उसको यार, नारद मुनि बार बार बता रहे हैं इस कथा में व्यास व्यास देव जी को कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, संतों का संग प्राप्त हुआ, इसलिए मेरे जीवन का उद्धार हो गया। और एक दिन फिर वो बीच में बताते कि मैं संतों की कृपा से मुझे भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न हुई। सडनली व्यास जी को बोलते हैं, इसलिए आप भगवान के विषय में गुणगान करो, उसको लिखो। लेकिन व्यास देव को बहुत इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया है, फिर क्या हुआ? बच्चा कहता है ना कथा में, पापा फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, हमको अंजाम आगे सुनना है, कथा अभी समाप्त नहीं हो गई। तो बीच में नारद मुनि जी बोल रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारे लिखने में कमी क्या है, तुमने भगवान के गुण का गौरव नहीं किया है, अभी लिखो उसको। तो व्यास देव कह रहे, नहीं नहीं महाराज जी, मुझे बताइए आगे क्या हुआ। तो नारद मुनि आगे की कथा बताते हैं, इस तरह से मैं बालक होते हुए भी, एक विशेष बात नारद मुनि कहते हैं, मैं बालक था फिर भी बालक जैसे खेलने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इतना मैं बचपन में ही प्रगल्भ हो गया था, मैच्योर हो गया था, कि नटखटपना, वो ऐसे टाइम पास करना, बच्चे का खेलौने में मन लगाना, इस तरह से काम में मुझे रुचि नहीं थी, मुझे भगवान के विषय में बहुत आकर्षण उत्पन्न हो गया था। एक दिन मेरी माता संतों की सेवा के लिए गाय का दूध निकालने के लिए जब जा रही थी, तो रास्ते में उसके पैर को सांप काटा, और सांप काटते ही माता का वही देहांत हो गया, अचानक मैं अनाथ हो गया। एक ही माता थी मेरी, पिताजी थे ही नहीं, और कोई था ही नहीं बीच, मैं और मेरी माता और संत लोग, तो मेरा परिवार समाप्त हो गया, जैसे मेरा छत ही निकल गया। लेकिन कहते हैं कि मैं फिर भी दुखी नहीं हुआ, मुझे लगा ये भी भगवान की कुछ योजना है। कहते हैं जिस झोपड़ी में मैं रहता था उसी में माता को रख के मैंने झोपड़ी को आग लगाकर माता का दाह संस्कार किया। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा घर ना होगी आसक्ति। इसलिए आखिरी आसक्ति जो माता का संबंध था ना, उसका माता का देहांत हो गया तो माता चली गई, अभी क्या करें उसके लिए, तो अभी घर था, घर के लिए मन लगेगा, तो उसने घर पे ही मां को रखा और घर को ही आग लगा के गरीब आदमी क्या करेगा, वो दाह संस्कार कर दिया। और संतों ने बड़ी कृपा की उन पर, बड़ा आशीर्वाद दिया उनको, और फिर वो विरक्त होकर चलने लगे बालक के रूप में। वो कहते हैं जंगल में गया मैं, शहर में गया, गांव में गया, पहाड़ों में गया, नदियों में गया, यहां गया वहां गया, पूरा भ्रमण किया मैंने। और एक दिन, बहुत दिन तक भ्रमण करने के बाद मैं थक गया, तो मैं एक शीतल जल वाले नदी में स्नान किया, बहुत फ्रेश हो गया मैं, जल का प्रसन्न किया, कुछ पेड़ के फल खाए, और एक पेड़ के नीचे मैं बैठ गया, और जिस भगवान के विचार में चिंतन करते करते मैं घूमता था, पूरे विश्व भर घूमा मैं, उसी भगवान को याद करते करते मैं एक जगह बैठ गया और ध्यान लगाया मैंने। सोच सकते हैं, 5 साल के बालक बालक का वर्णन कर रहे हैं हम लोग, बुजुर्ग आदमी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत नॉलेज प्राप्त कर चुका है, वेद पढ़ चुका है, बहुत भजन कर चुका है, ऐसे आदमी की बात नहीं कर रहे हम। 5 साल की उम्र है उनकी, माता को भी खो बैठा हुआ है, लेकिन शांत दिल से भगवान के विचार करते हुए चल रहा है। एक जगह बैठकर, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान का ध्यान किया था, तपस्या की थी, वैसे एक जगह बैठकर आंख बंद कर भगवान पर चिंतन करने लगा, और वो चिंतन इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि हृदय के अंदर भगवान ने उसको दर्शन दिया, भगवान प्रकट हो गए उसके अंदर के आंखों के सामने, और आंख खोली तो भगवान का दर्शन हुआ उसको, और इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। नारद मुनि खुद बोल रहे हैं, नारद मुनि खुद बोल रहे हैं कि मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ कि मैं एकदम भाव विभोर हो गया, ऐसे नारद मुनि बता रहे हैं। लेकिन एक अद्भुत घटना हुई उस समय, भगवान का दर्शन बंद हो गया। अभी भगवान को देखकर इतना आनंद का अनुभव कर रहे थे, रोम रोम आनंद का अनुभव कर रहे थे, रोमांच खिले हुए थे, हर प्रकार के आनंद के लक्षण प्रकट हो रहे थे, जीवन की परिसीमा लक्ष्य प्राप्ति हो गई, जिसका चिंतन कर रहे उसका दर्शन हो गया। लेकिन वो भगवान अंतर्धान हो गए, तुरंत अदृश्य हो गए। तो ये तड़पने लगे भगवान के लिए, जो प्राप्त किया था वो खो कैसे गया, क्या गलती हो गया, इतना तब भजन करके ध्यान करके उनको प्राप्त किया लेकिन कुछ ही क्षण में नष्ट कैसे हो गया वो दर्शन। रोने लगे जोर जोर से, बालक तो था ही, रोने के लिए प्रॉब्लम नहीं, बहुत जोर से रोने लगे। उस समय वही भगवान जो है आवाज के रूप में बात करने लगे उनसे, दर्शन नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हृदय से पूर्णता शुद्ध नहीं है उसको मेरा दर्शन नहीं होता है, लेकिन तुमने संतों की सेवा की है और तुम्हारी सेवा से संत लोग प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए आपको कुछ देर के लिए क्यों ना हो मैंने दर्शन दिया है, स्पेशल डिस्काउंट दिया आपको मैंने। क्यों दिया है बताइए, संतों की सेवा किया है और आगे क्या बताया मैंने, संतों की सेवा किया है लेकिन क्या हुआ है उसके वजह से, संतों को प्रसन्न किया सेवा करने से। आप समझ रहे हो आप सेवा कर रहे हो लेकिन जिसकी सेवा कर रहे हो उसको प्रसन्नता नहीं मिल रही अब तक, तो आपकी सेवा क्या हो गई, बेकार हो गई। आपको लग रहा है मैं इतना सेवा कर रहा हूं, दिन रात सेवा करता हूं, लेकिन सेवा करते किसके लिए है, जिसकी सेवा कर रहे हो उसको प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं, उसकी बेमतलब की सेवा नहीं करते हैं। सेव्य जो है, जिसकी सेवा करना चाहते हैं आप, उसको प्रसन्नता देना मतलब आपकी सेवा सफल हो गई, आपकी सेवा का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि आपने वैष्णवों का संतों का सेवा किया है और संत आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए मैंने, आप योग्य ना होते हुए भी, पूर्ण शुद्ध नहीं हुए अब तक आप, फिर भी आपको दर्शन दिया है। और दर्शन बंद क्यों करवा दिया, क्योंकि एक बार जो मुझे देख लेता है वो मेरे पीछे फिर बड़ा मोहित हो जाता है और कुछ भी चीज उसके आंखों में आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकती है। एक बार जो मुझे देख लेता है, मुझे देखने का लक्षण क्या बोलते हैं उसको, सिम्टम क्या है, प्रमाण क्या है। अभी कितने लोग बोलते हैं हमने भगवान का दर्शन किया है, ये साधु है ना, इन्होंने साक्षात दर्शन किया भगवान का। तो अगर साक्षात दर्शन किया तो उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ यह है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान के अलावा और कौन सी चीज मोहित नहीं कर सकती, ऐसे व्यक्ति को दुनिया के किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, यह उसका प्रूफ है। किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, ना शरीर के भोग में, ना सुंदरता में, ना ज्ञान में, ना पैसे में, ना दीर्घ आयु में, ना कोई सिद्धि में, सिद्धि में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता उसको। वो भगवान को एक बार देखने वाले व्यक्ति का लक्षण है। इसलिए अभी तुम जो देखा है तुमने उसके प्रति तुम पागल हो जाओगे दोबारा देखने के लिए, और मेरे ही पीछे ध्यान करते रहोगे, तड़पोगे मेरे लिए, तो और पवित्र हो जाओगे आप। जब मेरे लिए आप तड़पोगे कि मुझे, आपको इच्छा है मेरा दर्शन हो जाए, तो मेरे लालसा से ही आप शुद्ध हो जाओगे। इस तरह से वो जीवन भर जो देखा था उस पर ही ध्यान करते रहे। एक सर्वोत्तम व्यक्ति का दर्शन किया मैंने भगवान का, तो जो देखा था वो पूरा याद रहा और दुनिया से विरक्त हो गए, और उन्हीं के चिंतन में वो कहते नारद मुनि एक दिन मृत्यु का समय आया। लेकिन जीवन भर भगवान का दर्शन होने के बाद का जितना भी समय था वो उन्हीं की याद में निकाला मैंने। जैसे कैसे होता है, देखो दुनिया में कोई यंग लड़की एक यंग सुंदर व्यक्ति शादी करती है और एक साल शादी के होते हैं और फिर एक्सीडेंट में पति का मृत्यु होता है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि वो सुंदर बहुत अच्छे व्यक्ति जो पति थे उसकी याद में पूरा जीवन गुजारते, वो किसी में इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, मैंने देखा हुआ है। कभी कभी मर भी जाते हैं उनकी याद में, इतना आसक्ति होता है पति के ऊपर, इतना प्रेम होता है कि और दूसरी शादी करने का विचार मन में नहीं आता है, उसी के विचार में पागल रहते हैं वो कि कैसे वो गया, क्यों गया। हमने देखा है हमारी आंखों से ऐसे कई लोगों को, 2 साल के बाद शरीर छोड़ते हुए देखा है यंग औरत को बिना किसी वजह से, इतना प्रेम होता है। तो ये तो भगवान की बात कर रहे हैं, तो जीवन भर उसने भगवान की याद की, जिसका दर्शन किया था कुछ समय के लिए, उसी का ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो बालक। बालक मतलब भाई बूढ़ा हो जाता है, बहुत समय बीतता है। और कहते हैं जब मैं गुजरा, मतलब मेरा शरीर समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस समय महाप्रलय हो रहा था। तो बोलते मुझे याद है उस समय महाप्रलय जब हुआ तो मैं दिव्य शरीर को प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा से, भगवान के धाम में जो शरीर होता है ना, वो शरीर मुझे प्राप्त हो गया, जिस शरीर में मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, इतना सौंदर्य है, इतना ज्ञान है, चिरंतन शरीर है वो। लेकिन जब प्रलय हो गया तो ब्रह्मा जी के साथ मैं विष्णु के शरीर में चला गया, और प्रलय समाप्त होने तक, नई बार पहली पुनः एक बार सृष्टि का निर्माण होने तक के समय तक मैं ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के शरीर में निवास करता रहा। और उसके बाद जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं नारद मुनि बनकर अवतरित हो गया। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र का मतलब क्या है? नारद मुनि बता रहे हैं अपने व्यास देव को, शिष्य को बता रहे हैं कि मेरा जन्म भी बहुत अद्भुत था, मुझे माता नहीं थी, मैं ब्रह्मा जी के मन से ही जन्म लिया। इसलिए नारद मुनि को क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहते हैं, मन का पुत्र, माता का संबंध नहीं बीच में कोई, ऐसे ही प्रकट हो गए वो। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं नारद मुनि बना, और मुझे ऐसा जन्म से ही वरदान प्राप्त हुआ कि जन्म से ही मैं किसी भी लोक में जब चाहे तभी प्रवेश करने की मुझे अनुमति थी। आप कैसे अभी मूड आया तो पुणे जाएंगे, तब मूड आया तो दिल्ली जाएंगे, आपके पास तो इंडिया का पूरा परमिट है, कहीं भी जा सकते हैं, आप इंडियन हो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, कहीं रोकेंगे नहीं आपको। कुछ लोग होते हैं इंग्लैंड के वासी होते हैं, इंग्लैंड के पासपोर्ट होते हैं, इंग्लैंड के पासपोर्ट वाले लोगों को अमेरिका, यूरोप सब जगह फ्री एंट्री है, किधर भी जा सकते हैं आप, वीजा लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप ब्रिटिश नागरिक हो तो ब्रिटिश पासपोर्ट को दिखा के आप किसी भी देश में प्रवेश कर सकते हो। वैसे एक देश सिंगापुर है, सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास होगा ना तो आप किसी भी देश में प्रवेश कर सकते हो। हर बार वीजा निकालो, उसका एक्सपायरी, उसका कभी चालू होता है कभी खत्म होता है, देखने की जरूरत नहीं। ये तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ के देशों की बात कर रहे हैं, यहाँ से वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वो बात कर रहे हैं स्वर्ग लोगों की, नर्क लोगों की, वैकुंठ की, भगवान के धाम की बात कर रहे हो। बोले सभी जगह फ्री एंट्री थी मुझे, ऐसा शरीर मुझे प्राप्त करा दिया भगवान ने। ये नारद मुनि का इतिहास है। और ये नारद मुनि का इतिहास, नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि जब संतों की कृपा होती है तो इतना परिवर्तन होता है कि आदमी दुनिया का होने पर भी दुनिया से मुक्त हो जाता है। इसी को प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसी घटना को, कि दीक्षा के समय ऐसा परिवर्तन होता है जब संत कोई कृपा करके आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता है कि आज से तुम्हारा शिष्य है, मेरे नियमों का पालन कर रहे हो, सब कुछ पालन कर रहे हो, ठीक है तुम शिष्य बनने के योग्य हो। और उसको मंत्र देते हैं उस दिन, गुरु मंत्र देते हैं, खुद अपने हाथ से उसके माला पर जप करके वो आपको देते हैं, उसको प्रभावित करके, शक्ति आवेशित करके आपको देते हैं। तो वही महामंत्र आप जप करते हैं उस माला पर, तो आपको एकदम ऐसा आनंद होता है कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिन जिन की दीक्षा हुई उनको पूछो आप, जिस दिन दीक्षा हुई थी उस दिन जब पहली बार जप किया था तो कैसा आनंद हुआ था, कैसा अनुभव हुआ था कि ये कल के जैसा नहीं, आज अलग है कुछ। तो गुरु की सारी शक्ति उसमें आवेश हो जाती है और उसके आगे फिर परिवर्तन शुरू होता है। तो कहते हैं इनिशिएशन, शुरुआत। किसकी शुरुआत? परिवर्तन की शुरुआत, दिव्यता की ओर परिवर्तन की शुरुआत, दिव्यता की ओर यात्रा की शुरुआत। आज से आपकी दिव्यता की ओर यात्रा शुरू हो गई, और जो घटिया जीवन है उसको छोड़ के आप आगे जा रहे हो। जो जो भी घटिया है, जो जो भी निम्न है, जो जो भी नीच है, वो सब कुछ छोड़ के आप अभी आगे दिव्यता की ओर जा रहे हो। अभी केवल अच्छे ही विचार रहेंगे, अच्छे ही गुण रहेंगे, अच्छे ही कर्म रहेंगे, अच्छे ही कार्य रहेंगे, अच्छे ही लोग मिलेंगे, अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होगा, और सर्वोच्च जगह पर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। उसका अंतिम स्थान क्या है, लास्ट स्टॉप क्या है बताइए? एक दीक्षित भक्त जो है उसका लास्ट स्टॉप क्या है बताइए? दीक्षित भक्त बताइए कहां तक जाना चाहते हैं आप भगवान की भक्ति में? नहीं मालूम, बस का टिकट निकला लेकिन पता नहीं उतरना किधर है, ट्रेन में बैठे लेकिन पूछ रहे हैं कहां उतरोगे आप, पता नहीं, ट्रेन कहां जा रही है पता नहीं, तो आप क्या कहेंगे, पागल आदमी है, ट्रेन में तो बैठा हुआ, इसको मालूम नहीं उतरना किधर है। अरे सबकी, सब लोग की ऐसा अवस्था यही है, हम लोग सब लोग ऐसा रिचुअल के रूप में काम करते हैं, हर चीज का रिचुअल। मतलब क्या, चलो तिलक लगाने को बुलाया, लगाना है, क्या मालूम क्यों लगाते हैं। बाकी लोग पूछते हैं क्या लगाया आपने, बोले पता नहीं, वो हमारे गुरुजी ने बताया हम लगाते हैं उसको। कुछ लोग बोलते हैं कंठी क्यों पहन रहे आप, इसका क्या है, पता नहीं वो दीक्षा के समय पहना दिया तो बाद में मालूम नहीं क्या कारण है उसका। ये मनुष्य जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में जो भी कर रहे हैं आप उसका कारण होता है और वो पता होता है आपको कारण क्या है। तो दीक्षा लिया है तो आपका पर्पस क्या है उसका, दीक्षा का पर्पस भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, ये आपका लास्ट स्टॉप है। जब तक 100% आप भगवान की सेवा में लत नहीं हो जाते हो तब तक आप लगे रहते हो उसके अंदर। फिर पूछेंगे उसके बाद में क्या करते हो, अरे उसी में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा क्यों करते हैं, और सेवा करने के लिए, और सेवा क्यों करते हैं, और सेवा करने के लिए। भगवान का नाम क्यों लेते हैं, और नाम लेने के लिए, और नाम क्यों लेते हैं, और नाम लेने के लिए। अभी टेस्टी फूड अगर आप खाएंगे तो कब बोर होगा आपको, क्या है रोज टेस्टी खाने का, कभी भद्दा खाना भी खिलाओ ना, नमकीन ज्यादा, तीखा ज्यादा, मसाला कम, नमक कम वाला भी कोई खिलाओ कभी कभी तो अच्छा लगेगा जरा। ऐसा होता है कभी, अच्छा खाने वाला व्यक्ति रोज अच्छा ही खाता है, कभी बोलेगा नहीं थोड़ा अभी इस बार नमक कम कर देखो कैसा लगता है, फिर अच्छा खाना अच्छा लगेगा। और ऐसा होता है कभी, जो अच्छे कपड़े पहनता है वो कहेगा कि अभी एक फटा हुआ कपड़ा इधर दे दो, जरा बोर हो गया अच्छे कपड़े पहन के, थोड़ा सा गंदा मैला एक बेकार रंग का कपड़ा दे दो, थोड़ा आनंद आ जाएगा आज, थोड़ा चेंज मिलेगा। ऐसा होता है कभी, नहीं होता है ना। तो अच्छाई का भी कोई अंत नहीं होता है, अच्छाई में और अच्छा और अच्छा और अच्छा ही प्राप्त होता है, और अच्छे लोग मिलेंगे आपको, उससे भी अच्छे लोग मिलेंगे, उनकी भी सेवा करेंगे आप, और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अंतिम कहाँ जाएंगे, भगवान के बीच में जाएंगे जहां पर शुद्धतम भक्त भगवान के उनके साथ में लीला कर रहे हैं। नारद मुनि जी अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं, वो कहते हैं हे व्यासदेव मेरी बात समझो कि मेरा खुद का उद्धार कैसे हुआ है। मेरा खुद का उद्धार भगवान के चिंतन से हुआ है, जो चिंतन आप तो करते हो लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं आपने अभी तक, अभी उसके बारे में लिखो। जिन भगवान का हम चिंतन करते हैं उनका गौरव क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका कार्य क्या है, वो अवतार कब लेते हैं, क्या क्या करके अवतार लेते हैं, कौन से रूप में लेते हैं, उस अवतार में क्या करते हैं, उनके भक्त लोग कौन है, उनके बारे में लिखो आप। तो फिर नारद मुनि एकदम शांत हो गए, उनका दिल का कष्ट खत्म हो गया। जिस प्रश्न को लेकर वो आए थे कि क्यों मुझे मन में शांति नहीं मिल रही सेवा करने के बाद भी, सेवा करने का तो आदेश दिया था लिखो, वो लिख के आया मैं फिर भी शांति नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, उसका उत्तर आज मिला। क्योंकि लिखा तो बहुत सारा लेकिन उसमें एक कमी रह गई, भगवान के लीलाओं का गुणगान नहीं किया। वापस चले गए अपनी गुफा में, नदी में स्नान किया, सरस्वती नदी में, और गुफा में चले गए और क्या लिखा उन्होंने, श्रीमद् भागवतम का ये जो ग्रंथ है ना जो लेके आयो मैं, 18,000 श्लोक है इसके अंदर, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ उन्होंने लिखा। और जब ये लिखा उसके बाद में और कुछ लिखने की इच्छा ही नहीं बची उनकी, क्योंकि तो इसमें क्या लिखा, इसमें भगवान के भक्तों का और भगवान का चरित्र लिखा उन्होंने, सारी कहानियां जितने भगवान के अवतारों की थी और जितने भगवान के अवतार थे उनके कितने भक्त थे, जैसे नरसिंह भगवान का प्रहलाद भक्त था, विष्णु भगवान ध्रुव भगवान, ध्रुव ने विष्णु का भजन किया तो विष्णु दर्शन दिया उनको, प्रभु रामचंद्र, नरसिंह भगवान, वामन देव, बलि महाराज, सबका वर्णन किया उन्होंने। सबका वर्णन करने के बाद दशम स्कंद भगवान का खुद का जन्म से लेकर अंतर्धान होने तक का लीला का वर्णन किया, पूरे अवतार का वर्णन किया उन्होंने। 11-12 स्कंद में कलयुग का वर्णन किया, भगवान का ही गुणगान किया पूरा कंप्लीट। उसको समाप्त करने के बाद में मन में इतना आनंद का अनुभव हुआ उनको, क्योंकि सेवा का पर्पस पूर्ण हो गया, जिसके लिए सेवा दी गई थी वो सेवा का उद्देश्य पूर्ण हो गया उसका, संतुष्ट हो गए उनके गुरु महाराज। वो ये भागवत है जिसको हम लोग रोज पढ़ते हैं, कारण क्या उसका, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान है। भगवान जब चले गए ना अवतार समाप्त करके तो इस ग्रंथ के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान खुद कहते हैं भागवत में कि जब मैं अंतर्धान हो गया, मेरा समय समाप्त होने के बाद मैं चला गया अपने धाम में, उसी समय इस ग्रंथ के रूप में, इन ग्रंथों के श्लोकों के रूप में मैं प्रकट हो गया, और बाद में मैंने उसको मेरे भक्त व्यासदेव से लिखवाया। व्यासदेव ने हिमालय में नदी के पास बैठकर गणेश जी के हाथों इसको लिखवाया, ये ऐसा ग्रंथ है। इसको पढ़ने के बाद में कोई दुख नहीं बचता है, कोई परेशानी नहीं बचती है। और अभी अगर कभी आप परेशान होते हो ना, तो भी इसको लेके पढ़ के पढ़ो, इसको इसकी एकाध कथा को पढ़ो, आप आपका दुख नष्ट हो जाएगा। आप करके देखो, मैं केवल प्रचार नहीं कर रहा हूं। आपको कोई कष्ट हो रहा है, मन में कोई पीड़ा हो रही है, आज परेशान है आप, घर में कुछ परेशान हो गया आज एकदम, क्या करें, ऐसे होता ही है सबकी जिंदगी में, सबको होता है। कौन सी सुबह क्या लेके आएगा क्या मालूम, रात को तो चैन से सोए थे आप, सुबह उठने के बाद क्या होता है किसके हाथ में है। सुबह उठने के बाद पानी बंद हो गया, आज गैस का गीजर उड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ दूध वाला ही नहीं आया, और जो भाई आने वाले थे वो भाई आज नहीं आई, अभी सब पूरा दिन चौपट है आज का, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसका सोल्यूशन निकालने में लग जाते हैं। करना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहे, सोल्यूशन नहीं करना चाहिए। ओके गैस उड़ गया, उड़ने दो, ये हो गया, उड़ने दो, उसका सोल्यूशन भी करना चाहिए। लेकिन उसका असली सोल्यूशन ये है कि आप भगवान का नाम का जप और भगवान की कथा अगर आप श्रवण करेंगे ना, आपके ऊपर होने वाला दुख का परिणाम कम हो जाएगा, दुख नष्ट नहीं हो जाएंगे। दुख का प्रॉब्लम क्या मालूम है आपको, दुख का प्रॉब्लम यह है कि दुख का परिणाम जो होता है ना, वो तकलीफ वाला होता है बहुत। समझा, आपका भी 1,000 रुपए पॉकेट से किसने मार दिया ट्रेन में, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 1,000 रुपए गया, ऐसे रोते रोते बैठ सकते हैं आप दिन भर, 24 घंटे रो सकते हैं, और दो मिलेगा उसको बोल सकते हैं, अरे मेरा पॉकेट गया, अरे मैं ऐसा खड़ा था, मैं उधर तक तो जागरूक था, हाथ भी यहां पर था, मैं बाद में देखा तो नहीं था ऐसा, तो 50 लोग को सेम कहानी बताएंगे आप दिन भर, इतना रोएंगे कि 1,000 रुपया अभी भी मैंने बैंक से निकाला था, ये करना था, गया, दिन भर आप दुखी रह सकते हैं। या तो बोल सकते हैं ठीक है मेरा था ही नहीं, वो गया अभी, भूल जाओ उसको। किसके हाथ में, ये आपके हाथ में है। दुख भरे संकट आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दुख का परिणाम आपको स्वीकार करना है कि नहीं करना है, ये आपके हाथ में। जैसे ये नारद मुनि की माता का देहांत हो गया और रोते नहीं बैठा, बोले क्या कर सकता हूं मैं, भगवान की इच्छा है, माता का देहांत हो गया, सर्प का काट के कटने के बाद में तो विरक्त होकर चला गया भगवान के ध्यान में। तो हमारे एक गुरु स्वामी जी थे श्रीधर महाराज, वो हमेशा कहते थे कि दुख आना असंभव है, मतलब दुख आना क्या कहते हैं उसको, टाल नहीं सकते उसको आप, अनिवार्य है वो, लेकिन दुख आने के बाद दुखी होना कि नहीं होना ये आपके हाथ में, ऐसा बताते थे। सोचिए आप इसके ऊपर, घर जाके सोचिए आज कि दुख आना अनिवार्य है, लेकिन दुखी होना कि नहीं होना ये आपके हाथ में है, कितना दुख करना उसके लिए और कितना नहीं करना ये भी आपके हाथ में, क्या खोने पर कितना सर पटकना है और वही खोने पर कुछ भी करना नहीं है ये भी आपके हाथ में। इसलिए आप देखते हैं हॉस्पिटल में कितने लोग मरते हैं, लेकिन सबके रिश्तेदार सेम रोते हैं क्या, 3 घंटा 30 मिनट सब लोग रोते हैं, जो जो से रोते हैं एक ही वॉल्यूम में रोते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ही परिवार में भी एक औरत छाती पीट कर रो रही है और एक आदमी शांत खड़ा है, होता है ना ऐसे, तो दुख भी कितना करना है आपके हाथ में। और अगर होने वाले दुख का परिणाम आपको आपके ऊपर नहीं चाहिए, तो आप भगवान के नाम का और भगवान की कथाओं का आश्रय लो। और मैं बोल रहा हूं इसलिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर आपके घर में कोई मरने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी होगी आपको, आप भगवान की कथा उठा के पढ़िए और उसके बाद में आप ही सोचिए कि अभी आपको दुख कितना हो रहा है, पहले कितना होता था, अब ये कितना हो रहा है 1 घंटे के बाद पढ़ने के बाद में। ये इसकी ताकत है, क्यों ताकत है इसकी, क्योंकि ये कथाएं स्वयं कृष्ण हैं, इन कथाओं को पढ़ना मतलब साक्षात कृष्ण के साथ संग करने जैसा है, कृष्ण के उपस्थिति का अनुभव करने जैसा है। यहां तक कि इसका प्रूफ है कि जब कृष्ण भगवान की पत्नियां कृष्ण भगवान के जाने के पश्चात बहुत दुखी हो गई, वो कितनी थी वो पत्नी, नंबर कितना था उनका, यस कितनी पत्नियां थी, 1, 2, 5, 10, 11, 12 कितनी थी, 350 कितनी थी बताइए, तो बोलते क्यों नहीं है वो, 16,108 पत्नियां थी उनकी, एक साथ सब लोग दुखी हो गए, रोते रोते वृंदावन में आ गए, उनको भगवान ने कहा था कि इनको वृंदावन में ले जाओ, तो राजा उनको वृंदावन में ले गया परीक्षित महाराज, फिर वो उद्धव जी से मिले, अभी भगवान के साथ साक्षात जिन्होंने संग किया है पत्नी के रूप में, कितनी भाग्यवान औरतें होंगी वो, और कितना दुख करती होंगी कि ऐसे भगवान हमारे पति बने और हम आज उनको खो बैठे, चले गए वो। उस समय उद्धव जी मिले उनको, भगवान के चचेरे भाई है वो, उद्धव जी ने उनको भगवान की कथाएं सुनाई श्रीमद भागवत 30 दिन के लिए, और आश्चर्य की बात क्या है कि भगवान की कथा श्रीमद् भागवत उन्होंने आरंभ करते ही पत्नियों का रोना बंद हो गया, तुरंत आनंद से खेल उठी वो। क्यों? किस व्यक्ति को खोने पर रो रही थी वो? भगवान को खोने पर रो रही थी। भगवान नहीं है अभी हमारे साथ में, इसलिए वो रो रही थी। और रोना बंद हो गया मतलब क्या? उनको श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ होते ही भगवान के होने का अनुभव हुआ, भगवान के अस्तित्व का अनुभव हुआ। उसके बाद एक महीना उन्होंने भागवत सुना उद्धव जी से, एक भी अश्रु नहीं बहाए उन्होंने, बड़े ही चाव से आनंद से अपने ही भगवान अपने ही पति की लीलाओं का दर्शन कर रहे। अरे यही मेरे पति नरसिंह भगवान बनकर आए थे, यही मेरे पति वामन देव भगवान बनकर आए थे, यही मत्स्य बनकर आए थे, यही राम बनकर आए थे, इनके समय पे प्रहलाद जी भक्त थे, इनके समय बलि महाराज भक्त थे, इनके समय ऐसे सब सुन रहे हैं। जब उनकी खुद की कथा आरंभ होती है तो खुद का दर्शन भी करते हैं उसके अंदर। मतलब अभी भागवत में कथा आती है ना, रुक्मिणी का विवाह हुआ, सत्य मामा का, सबकी कथा आती है, सत्य मामा खुद बैठकर सुन रही है अपनी कथा, तब उनको अति आनंद का अनुभव हुआ। और श्रीमद् भागवत जब उद्धव जी ने 30 दिन की कथा समाप्त की, उस समय सारी जो जितनी पत्नियां थी भगवान की वो सब भगवत धाम चली गई, वहीं से उनका उद्धार हो गया। तुरंत कथा समाप्त होते ही भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया उन्होंने, इतना शक्ति है इसके अंदर। अगर आपको सच में ही हृदय से भगवान का संग करने की इच्छा है तो आप इसको पढ़ो और खुद ही तय करो, मुझे आके सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैंने भगवान के अस्तित्व का अनुभव किया, खुद ही करो और करते रहो। हमने किया है और हमने अनुभव भी किया है, आप भी करो। इससे और अभी क्या कर सकते हैं? ये गुलाब जाम है, ये मीठा है, बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है, रस भरा है, अभी मैंने खा लिया है, बड़ा आनंद का अनुभव किया है, अभी आप खा लो और बताओ कि आपको कैसे लगा। और आप बोल रहे हैं सर अभी खाना जरूरी है क्या, कल नहीं खा सकते क्या, अभी तो खाना खा के आया हूं मैं, ऐसे आप बहुत सारे बहाने बना सकते हैं। लेकिन वो जो मैंने वर्णन किया है उसका अनुभव आपको अभी की अभी मिल सकता है अगर आप उसको ट्राई करोगे तो। उसी तरह से मैं यहां पर चाहे 100 घंटा प्रवचन करूंगा और भगवान के ग्रंथ का महिमा बताऊंगा, भगवान की कथा का महिमा बताऊंगा, सारा बड़े रस भरे वर्णन करता रहूंगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मेरा वर्णन वर्णन ही रहेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपको विनती है कि आप जब भी आपके जीवन में दुख होगा या नहीं भी होगा, नित्य रूप से इसका श्रवण करना और नित्य रूप से सुबह भगवान के अनुभव का, अस्तित्व का अनुभव करना और बड़े अच्छे तरह से भगवान का अनुभव करके काम पे आना और घर जाना, हाथ पांव धोना और फिर भगवान की कथा सुनना। हमारे भारतीय संस्कृति में क्या करते थे रोज मालूम है आपको? किसान लोग सुबह उठते थे, पहले राम का नाम जपते थे, जब तक सूरज उग गया तब तक राम का नाम जपते थे, सूरज आ गया तुरंत खेती पे जाके खेती करते थे, कब तक? सूर्यास्त होने तक। सूर्यास्त हो गया, खेती का काम बंद कर घर पे आते थे, हाथ पांव धोते थे और बैठकर रामायण महाभारत पढ़ते थे, एकाध घंटा अच्छी तरह से सब लोग बैठ के परिवार के लोग रामायण सुनते थे, फिर भगवान की आरती करते थे, भगवान को भोग लगाकर उनका प्रसाद पाकर उनका ही ध्यान करते करते सो जाते थे, फिर उठते थे सुबह भगवान का नाम जपते थे और खेती करते थे, ये हमारा संस्कृति है। फिर शाम को क्या हो गया? फिर टीवी आ गया, फिर रामायण बंद हो गया, रामायण कहने वाले दादाजी भी पुस्तक बाजू में रखे ऐसे बैठे हैं, अभी किलबिल शुरू होगा, उसके बाद फूल खिले गुलशन गुलशन, उसके बाद छाया गीत, अभी हमारी बातें बचपन की हमको अभी याद नहीं क्या होता है, अभी कपिल शर्मा का शो आ रहा है, अभी इसका आ रहा है, क्या पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब बैठे हुए हैं, रामायण महाभारत सब भूल चुके हैं, अभी उनको वही कथा चाहिए कि ये फिल्म स्टार ने क्या किया, उसके साथ में क्या हुआ, आज शादी किसकी हुई, कहाँ पर हुई और कहाँ रिसेप्शन होने वाला है, ये सारी कथाएं हमको बहुत रुचि है उसको सुनने में, और गोद में क्या गिर रहा है, दुखी दुख गिर रहा है। फिर दोबारा हमको उस जगह जाना है जो हमने खो चुके हैं, उसको छोड़कर अभी यहाँ तक आए हैं, फिर दोबारा वही करना है जो पहले हमारे पुरखे लोग करते थे, भगवान की याद करके भगवान का गुणगान का श्रवण करना है, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये भाग्य है और आपकी योग्यता है कि आप हमेशा खुश रहें, आपका राइट है वो, ये मत समझना कि संतों का ही राइट है, संत लोग आनंद रहते हैं, आप सब लोगों का ये योग्यता है कि आप हमेशा खुश रहें, लेकिन खुश रहने के लिए आपको वो फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा, फिर आप खुश रहेंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।